रूपाली जी ने अक्षय को दूसरी शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, पर इस बार अक्षय सख्ती से उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जब उसने धमकी दी कि अगर अब उसकी दोबारा शादी की बात उठी तो वो घर छोड़कर चला जाएगा, तब जाकर उनका मुंह बंद हुआ। पर उन्होंने फिर अहाना को सुनाना, उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पर अहाना ने तो बहुत पहले ही उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था, उसे उनके तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब के बीच अन्वय की शादी की बात उठ चुकी थी। उम्र तो हो ही गई थी, शादी अब करनी ही थी, और अन्वय फैसला सुना चुका था कि अगर वो शादी करेगा तो अंतरा से ही करेगा। अभिजीत जी, दादा दादी सब इस रिश्ते के लिए तैयार थे, अंतरा भी हाँ कह चुकी थी। रूपाली जी ने धमकी दी कि अगर अंतरा से शादी हुई तो वो शादी में शामिल नहीं होंगी और घर छोड़कर चली जाएंगी, जिस पर अभिजीत जी ने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में बहू बनकर वही लड़की आएगी जिसे उनका बेटा चाहता है। रूपाली जी सारे दाव पेच इस्तेमाल करने के बाद भी अन्वय और अंतरा का रिश्ता तय होने से रोक नहीं सकी। कानपुर में भी किसी को इस रिश्ते से इनकार नहीं था, जिसकी दो खास वजहें थीं। पहला, अन्वय को वहां सभी बहुत अच्छे से जानते थे, अन्वय और अंतरा दोनों एक दूसरे को चाहते थे, और दूसरी वजह थी अहाना। अंतरा की अन्वय से शादी करने से अहाना को अपनी बहन का साथ मिल जाएगा। रूपाली जी के नेचर से सभी परिचित थे और अंतरा का यहाँ आना अहाना के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था, क्योंकि वो टेढ़ी चीज थी, जैसे को तैसा देना जानती थी। रूपाली जी जैसी सास को अपने तरीके से बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी। दोनों परिवारों की सहमति से दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया। शादी के लिए पूरा सहगल परिवार कानपुर गया था। लड़के वाले उसी होटल में ठहरे थे जहां शादी की सारी रस्में हुई थीं। ऐसा सिर्फ अहाना के लिए किया गया था, ताकि वो अपने देवर और बहन दोनों की रस्मों में शामिल हो सके। सब इस रिश्ते से खुश थे, बस रूपाली जी अंदर ही अंदर झुलस रही थी। वो घर पर ही रुकी थी क्योंकि कुल देवता वहीं थे और ऐसे शुभ मौके पर घर को बंद नहीं किया जा सकता था। बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई। अंतरा और अन्वय एक दूसरे के साथ शादी के अटूट बंधन में बन चुके थे। विदाई में अंतरा मैडम जरा भी नहीं रोई, आखिर वो अपनी जीजी के पास जा रही थी, फिर दुख कैसा। सभी घरातियों और बारातियों संग बारात दुल्हन को लेकर दिल्ली लौट चुकी थी। लोगों के दिखाने के लिए ही सही, पर रूपाली जी ने घर की नई बहू का स्वागत शानदार तरीके से किया था। अहाना हर पल अंतरा के साथ रही। गृह प्रवेश के बाद कुछ छोटी मोटी रस्में हुई, बाकी की रस्में अगले दिन पूरी की गई। रात अंतरा ने अहाना के साथ ही बिताई थी। अहाना ने पूरी शादी में एक बहन के साथ साथ अन्वय की भाभी और घर की बड़ी बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया था। इन सालों में उसने खुद को पूरी तरह से इस घर के तौर तरीकों के हिसाब से ढाल लिया था, उनकी रीति रिवाज और परंपराओं को सीख लिया था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी वो कि किसी को शिकायत का मौका ना दे। फलक ने अहाना का बहुत साथ दिया था, पहले दिन से आज तक, जबकि एक बच्चे के साथ उसके लिए ये सब जरा मुश्किल था। इस शादी से वो भी बड़ी खुश थी, अपनी माँ को समझा समझा कर वो भी थक चुकी थी, और अंतरा का इस घर में आना उसे हर परेशानी का हल लग रहा था। दिन भर चली रस्मों के बाद फलक ने अंतरा को डिनर करवाया, जबकि अहाना मेहमानों के खाने पीने के इंतजाम में लगी हुई थी। उसके बाद अंतरा को तैयार करके अन्वय के कमरे में ले जाया गया, जिसे उनकी आज की स्पेशल नाइट के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। एक तरफ यहाँ लड़कियों का झुंड हमारी शैतान अंतरा को छेड़ने में लगा था और उसने उल्टा उन सबकी ही बैंड बजा दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अन्वय, जिसने सबकी शादियों में खूब मजे लिए थे और अपनी नटखट शैतानियों से सबको खूब सताया था, आज वो अपने सब भाइयों और दोस्तों के बीच फंसा पड़ा था और सब मिलकर उसके मजे ले रहे थे। पर अन्वय को उनकी छेड़छाड़ भरी बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस इंतजार में बैठा था कि कब इन कंजरों से छुटकारा मिले और वो अपनी तीखी मिर्ची के पास पहुंच जाए। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ और बादशाह सलामत की शाही सवारी उसे लेकर उसके कक्ष तक पहुंच गई, जहां लड़कियों का झुंड उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। बच्चू, तुम्हारी बैंड बजाने तो अब तुम्हारी बीवी आ गई है, अब वही तुमसे अच्छे से वसूली करेगी। जाओ, हमने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यूं ही मुफ्त में छोड़ दिया, फलक ने मजाकिया अंदाज में कहा, और उसकी बात पर अन्वय की जो शक्ल बिगड़ी उसे देखकर उसके साथ साथ बाकी सब लड़के लड़कियां ठहाके मारकर हंस पड़े। संभल कर रहना अन्वय, सुना है तुम्हारी बीवी चलता फिरता तोप का गोला है, कहीं शादी की पहली रात ही तुम पर न फूट पड़े। अन्वय के सताए किसी भाई ने मौका पाते ही बदला ले लिया। उसकी बात सुनकर अन्वय ने नाक से कोड़ते हुए बुरा सा मुंह बनाया। थोड़ी देर यूं ही सब मिलकर उसे अंतरा का नाम लेकर डराते और छेड़ते रहे। फिर अन्वय ने सबको खदेड़कर वहां से भगाया और खुद झट से कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी। कमरे में बिखरी भीनी भीनी खुशबू उसकी सांसों को महका गई और आखिरकार अब वो जी भरकर अंतरा को देख सकेगा। ये ख्याल मन में आते ही उसके लबों पर कातिलाना मुस्कान बिखर गई। आंखों में ढेरों ख्वाब और ख्वाहिशों को सजाए वो बेड की ओर पलटा, पर जैसे ही नजर बेड पर पेट के बल उल्टी पड़ी अंतरा पर पड़ी, उसके सारे सपने, सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान किसी शीशे के महल जैसे छन की तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गए। कहां तो उसने सोचा था कि आज अपनी नई नवेली दुल्हन को जी भर कर निहारेगा, उसे प्यार करेगा, पर यहां तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया था। अंतरा मैडम, जिसे शादी के जोड़े में दुल्हन बनकर बेड पर घूंघट डाले बैठा होना चाहिए था, वो टी शर्ट और लोअर पहने बेड पर उल्टी पड़ी फोन चला रही थी। न शादी का जोड़ा था और न ही गहने, न कोई साज श्रृंगार होना ही घूंघट। वो तो बिल्कुल वैसे ही सादे लिबास में बेफिक्र सी लेटी हुई थी, जैसे शादी से पहले अपने कमरे में रहा करती थी। बस अंतर इतना था कि उसकी मांग में सिंदूर सजा था, गले में मंगलसूत्र झूल रहा था और दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी रची थी, जो ये जाहिर कर रही थी कि उस मोहतरमा की हाल फिलहाल में ही शादी हुई है। अनवे के मुस्कुराते लब सिमट गए। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए ठंडी राह भरी और उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। क्या कर रही हो तुम? अनवय के सवाल पर अंतरा ने फोन पर गिटपिट उंगलियां चलाते हुए लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। शादी की फोटोज अपलोड की थी, उस पर इतने कमेंट्स आए हैं, उन्हीं का रिप्लाई दे रही हूँ। ये अभी ही करना जरूरी है? अनवय के सवाल पर अंतरा ने खींचते हुए तपाक से जवाब दिया। और नहीं तो क्या, सुबह से अब जाकर तो मुझे सांस लेने की फुर्सत मिली है। अभी नहीं किया तो कल सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ ही तुम्हारी माँ मेरे सर पर सवार हो जाएगी और सारा दिन स्ट्रॉ लगाकर मेरा खून पीती रहेगी। तब कहाँ वक्त मिलेगा मुझे? पर आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना? हाँ है तो? अंतरा ने बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया। ध्यान उसका अब भी फोन पर था। उसका लापरवाही भरा अंदाज देखकर अनवय के रुख पर नाराजगी के भाव उभर आए। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी आज की रात मेरे नाम होनी चाहिए? तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए, पर यहाँ तो तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं। कितना कुछ सोचा था मैंने, पर तुमने सब पर पानी फेर दिया। कहा मैंने सोचा था कि तुम दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा, पर तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम मेरी वही नई नवेली दुल्हन हो जिसे देखने के लिए मैं इतना बेताब था। तुम्हारा सारा ध्यान तो तुम्हारे फोन पर लगा है, मेरे होने ना होने से तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनवय की शिकायतें सुनकर अब अंतरा ने फोन पर से निगाहें हटाते हुए तिरछी निगाहों से अनवय को घूरा, जो नाराजगी से मुंह फुलाए उसे ही देख रहा था। अंतरा ने अपना फोन साइड में रखा और उठकर चौकड़ी मारकर उसके सामने बैठ गई।
अच्छा, तो इसीलिए तुमने कद्दू जैसा मुंह फुलाया हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी। अंतरा ने भौं सिकोड़ते हुए उसे घूरा और तल्ख लहजे में आगे कहना शुरू किया। एक बात बताओ मुझे कि कौन सी रामायण, महाभारत या वेद पुराण आखिर कहाँ लिखा है कि शादी की पहली रात लड़की को वो भारी भरकम शादी का जोड़ा पहनकर, गहनों की चलती फिरती दुकान बनकर, 10 हाथ का घूंघट डालकर अपने प्यारे पतिदेव का इंतजार करना चाहिए?